ഏകാഗ്രചിത്തംഗേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. വഞ്ചാകൽപ്പതരുഭ്യഃ കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ മഹാവദന്നായ കൃഷ്ണപ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരത്തിശേ. ഗുരവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായൈ തദാലയൈ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയ മുദീര. कल व्यास जी का वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का जन्म है. टुमारो इज द बर्थडे ऑफ कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हु ब्रॉट श्रीमद् भागवतम फ्रॉम गोलोक वृंदावन टू दिस अर्थ. व्यास जी ने ही श्रीमद् भागवत को गोलोक वृंदावन से यहाँ लाया था. कुछ लोगों की धारणा ये है व्यास जी ने भागवत को लिखा किंतु ये पहले से ही थी. भागवत कृष्ण पहले से थे. कृष्ण का स्वरूप भागवत है. तमादिदेवं करुणा निधानम समालवरणम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र से तो भजामहम भागवतम. कृष्ण का लीला चरित्र ही उनके जो उपदेश हैं, कृष्ण का लीला चरित्र सब कृष्ण ही है. व्यास जी ने जगत में प्रकट किया, जैसे गीता अनादि काल से है, वेद अनादि काल से हैं, ये सभी भगवत स्वरूप हैं. ऋषि मुनि लोग अपने हृदय में उसको अनुभूति करके उसको प्रकाश करते हैं. जैसे वेदों को ब्रह्मा जी ने अनुभव करके भगवान की इच्छा से उसको प्रकाशित किया. भगवान ने उनके हृदय में प्रकाशित किया वेदों को. तेने ब्रह्म हृदाज आद कवये मोहियंत जत सूरज. वेद तत्व को, ज्ञान तत्व को, जिससे बड़े बड़े मुनि लोग भी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा के हृदय में पहले दिया. गृहाण गदितम मया ज्ञानम जद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगश्च गृहाण गदितम मया. मैं तुम्हें कह रहा हूं इसको तुम ग्रहण करो. नहीं ग्रहण कर सके तो हाथ से नजर से उनके अंदर में दिया और दे करके उनको अंदर में सब कुछ प्रकाश उपलब्धि करा दी. उसी को ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से वेद के रूप में जगत में प्रकाश किया. उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत इस ब्रह्मा के पहले से भी है, जगत के सृष्टि से भी पहले है. नित्य वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में वो है. नाद की कृपा से व्यास जी ने अनुभव किया भक्ति योग के द्वारा और तब जगत में प्रकाश किया. उनका जन्म ये कल का दिन है, पूर्णिमा के दिन में. पराशर जी ब्रजमंडल में ही रहते थे. उनके पिताजी भक्ति के प्रवर्तक थे. जैसे नारद जी हैं, पराशर जी हैं. नारद जी का सूत्र है भक्ति सूत्र, और इनका भी, पराशर का भी भक्ति सूत्र है. जैसे सांडिल्य का सूत्र है, ऐसे इनका भी सूत्र है. तो ये पराशर जी कहीं शाम को कहीं से लौट रहे थे अपने आश्रम में, और उसी समय में शाम हो गई, अंधकार होने जा रहा था, और जो मल्लाह था वो थक गया था दिन भर नौका चलाते चलाते, वो अब विश्राम करने जा रहा था। और पराशर जी आकर के खड़े हो गए, जी हमको पार करना है। तो वो अपनी बेटी को कहा, जी बेटी मैं थक गया हूँ, तो जरा ये महर्षि हैं उनको पार कर दे। उनकी लड़की 16 वर्ष की, उनकी अपनी खास लड़की नहीं, किसी गंधर्व, कौन गंधर्व, उपरिचर बसु की कन्या, और जन्म लेने के पहले ही उन्हीं का वो आई, मछली ने उसे खा लिया वृद्ध को, और मछली के पेट में चली गई, और वहीं पर बड़ी गर्भ रहा, और ठीक समय पर मछली से उसके पैदा हुई, इसलिए मच्छोदरी भी इसको कहते हैं, मत्स्य उदरी, मछली के पेट में उदर में रहने वाली, पैदा होने वाली, और मछली जैसा उसका गंध था, मत्स्य गंधा, मछली का गंध उसके शरीर से निकलता था। बड़ी सुंदरी रूपवती, 16 वर्ष की, अभी शादी नहीं हुई, ऋषि को कहा बैठी हम आपको पार करें, पिताजी कह रहे हैं, पिताजी के कहने से नौका में बैठाया और इसी घाट से उस पार ले जाने लगी। उस समय में जमुना जी और चौड़ी गहरी थी, उधर में एक दीप बना था, उस दीप पर कुछ जंगल, जंगली घास और जंगली पेड़ उगे थे, घना घोर जंगल जैसा। वहां पर पहुंचते ही आकाश में मेघ छा गया, कुछ और अंधकार हो गया, और उसी ने उनके तरफ में, लड़की के तरफ में देखा, देखते ही वो सहम गई, और साथ ही साथ में उसको गर्भ हुआ, साथ ही साथ में बच्चा पैदा हो गया। कुंती को जैसे स्मरण किया सूर्य को, और उनको पुत्र कान से पैदा हो गया कर्ण, तो वैसे ही मिनट भी नहीं लगे और बच्चा उसको पैदा हो गया। कितना बड़ा, 16 साल का, एकदम मुस्तम नंगा धड़ंग का, श्याम रंग का, और कैसा वेद उपनिषद शास्त्र समूह, पहले से उसको सब कुछ ठीक है। भगवान का अवतार, कौन सा अवतार, सत्य अवतार, वो पैदा हो गया। लड़की देख करके डर गई, मुझे लोग क्या कहेंगे, जैसे इसकी शादी नहीं है कुछ नहीं हुआ, बच्चा पैदा हो गया, एक सेकंड भी नहीं लगा। पराशर जी ने कहा, जी ये बेटा भगवान का अंश है, ये विशेष काम के लिए जगत में आविर्भूत हुआ है। वही आगे चल करके उन्हीं का नाम वेद अभ्यास हुआ। किसलिए वेद अभ्यास हुआ, वेद का विश्व में प्रचार किया, उसके चार भाग किए और उसके ज्ञान को चारों तरफ में विश्व में दिया। व्यास कहते हैं परिधि को, एक छोर से, सेंटर से लेकर के दूसरी छोर तक चला जाए वह लाइन, और जितनी भी लाइनें होंगी सब बराबर होगी चारों तरफ से, किंतु जो दो लाइनें एकदम आर पार में जाएंगी छूकते हुए, तो उसको कहते हैं व्यास। सत विश्व में सर्वत्र भगवान की कथाओं को प्रचार करने वाले जो हैं, इनका नाम व्यास है। वेद का विभाग किया, इसके बाद में वेद का अर्थ बड़ा कठिन, उच्चारण करना ही कठिन, उसका भाव समझना और भी कठिन, इसलिए उसके सूत्र बनाए, जिसको कहते हैं वेदांत सूत्र, 550 के करीब। और उसमें कहीं लिखा भगवान का रूप है, कहीं भगवान का रूप नहीं है, भगवान में गुण है, भगवान का गुण नहीं है, भगवान को देखा जा सकता है, भगवान को नहीं देखा जा, भगवान चलते हैं भगवान नहीं चलते इत्यादि ऐसी परस्पर विरोधी भी बातें हैं। इनका सामंजस्य बतलाया ब्रह्म सूत्र में, जड़ शरीर नहीं है इसलिए उनको अरूप कहते हैं, अप्राकृत उनका शरीर है, उनके मूर्ति है, उनके गुण है। अपाणिपादो जवनाग्रहिता पश्चत चक्षु श्रणोत चकर्ण परास शक्ति विविधैव सूयते, हम ब्रह्मास्मि सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये सब वेदों को लेकर के उसका सामंजस्य किया। इसको समझे कौन, पुराण लिखे उसको समझाने के लिए 36 प्रकार के पुराण लिखे गए। पुराणों में आख्यान के द्वारा उपाख्यानों के द्वारा समझा बुझा करके ये सब लिखा गया, किंतु उसमें सार वस्तु को ग्रहण करना है बड़ा भारी कठिन, उपाख्यानों को भी लोग नहीं समझ सके, इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना की जिसमें वेद में तो स्त्रियां नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकते। शूद्र माने क्या, ये जाति का शूद्र नहीं, जो सब समय संसार में मशगूल है, शरीर को ही आत्मा समझता है और इसी में वो शूद्र है, जो एक शरीर के लिए शोक करता है वो लोग शूद्र हैं। आजकल ब्राह्मण भी शूद्र हैं यदि मरने पर शोक करते हैं, आत्मा अजर अमर नित्य है और ये शरीर भी मट्टी, ये भी नित्य ही एक तरह से है, मिट्टी से बना मिट्टी में मिल जाएगा, इसके लिए जो शोक करते हैं वो शूद्र हैं, जो शोक नहीं करते आत्मा अजमर नित्य शाश्वत आनंदमय है इस चीज को समझ करके उपलब्धि करते हैं वो ब्राह्मण है। व्यास जी ने ये सब किए, महाभारत की रचना भी की और ऐसा किया कि ऐसे जो शूद्र हैं और जो स्त्रियां हैं जो सब समय अपवित्र रहती हैं, रसोई के काम के अपेक्ष और कुछ नहीं करती, भगवान के तरफ में चिंतन करने का जिनको समय नहीं है, उनके लिए भी महाभारत लिखा। ऐसा दो आदमी लड़ रहे हैं, भीम और कर्ण लड़ रहे हैं, भीम और कौन दुर्योधन लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, ये सब लोग समझेंगे। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, उस समय एक साधारण आदमी को भी रोष आ जाएगा। ऐसी ऐसी रोचक कथाएं युद्ध के माध्यम से लिखी ये साधारण आदमी भी समझ जाए, और उसके अंदर में गीता का तत्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व इत्यादि सब लिखे, और उसमें गीता का ये उपदेश भी गीतो उपदेश दिया। कभी उनको शांति नहीं हुई, अंदर कुछ कमी है। पुराणों के लिखाते समय में किसी लेखक की जरूरत थी, वो बोलते जाए वो लिखते जाए, इसलिए गणेश जी को चुना गया। ब्रह्मा जी ने गणेश को भेजा, गणेश जी ने कहा कि मैं नहीं लिखता, किसी का मोहर्री नहीं हूं, मैं साधारण नहीं हूं। कहे ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है आपको और हमको भी, तो आपकी जहां लिखाते लिखाते आपकी आप बंद हो जाएगा आपका लिखना, बोलती बोलना बंद कर देंगे, इसके बाद में कलम नहीं उठाऊंगा, आप बोलते चले जाएंगे मैं लिखता चला जाऊंगा। किंतु उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा होगा, किंतु समझ बूझ करके लिखना, बिना समझे लिखेगा तो तुम्हारा ये जो हाथी का मस्तिष्क है उड़ जाएगा। तो ठीक है, साधारण लोग ने पुराण लिखाते गए, साधारण भाषा है उसको सभी लोग समझ सकते हैं, और कहीं कहीं पर उसमें व्यास कूट दे दी। कूट माने क्या, कठिन जटिल कठोर, कौन सा खंड खंड तो ऐसे ऐसे चीजें भागवत भी पुराण है, कोई बात महापुराण है। तो ऐसे ऐसे सब चीजें कूट उठ में रख दी, क्या उसका अर्थ क्या है? पंडित और ब्राह्मण लोग खा रहे हैं गो मांस,
गो अर्थात
एक जगह लिख दिया है सूर्य को, सूर्य अपनी कन्या के पीछे आसक्त होकर के पीछे पीछे चल रहे हैं। क्या मतलब? शाम हो गई है, ऐसे ऐसे सब लिखे कूट। और भागवत का तो प्रसिद्ध ये सब ही है, साधारण आदमी इसके अर्थ नहीं, इसे उनको सोचना पड़ता था और सोचते सोचते हजारों श्लोक फिर से बना देते। इस तरह से ये वो लिखा गया। अंत में जब उनकी उनको सुख नहीं मिला, सारे विश्व के गुरु हैं और उनको ही सुख नहीं मिल रहा और सब जगह को उपदेश देते हैं, इन्हें बतलाओ जब जब व्यास जैसे लोगों को सुख और शांति नहीं है तो साधारण लोगों के लिए तो बात ही क्या। दिनु गुरु भवन निधि तरे न कोई, क्यों दिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा और शंकर के समान भी यदि कोई पंडित विद्वान आदमी हो, शंकर और ब्रह्मा के लिए नहीं कह रहे हैं, शंकर और ब्रह्मा दोनों गुरु हैं जगत के, उनके समान यदि कोई हो, ब्रह्मा के भी गुरु हैं, कौन? स्वयं नारायण है गुरु, क्योंकि उन्होंने उपदेश दिए, उनको दीक्षा दी कृष्ण ने बंसी के द्वारा और जोग माया ने उनको गोपाल मंत्र और काम गायत्री की दीक्षा दी, इसलिए हमारे गुरु हैं। अपनी परंपरा में कृष्ण उनके गुरु हैं, नारायण उनके गुरु हैं और शंकर के शंकर संत बलदेव जी उनके गुरु हैं। बिनु गुरु भवन भी तरे न कोई, कोई भी संसार को नहीं तर सकता। आजकल गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु से दीक्षा हरि नाम ले लिया फिर गुरु की क्या जरूरत है, फिर शिष्य करने बैठ गए या भजन कर लिया सब। व्यास जी इतना दिनों तक सब कर करके नारद जी के शिष्य रह करके सब कुछ करके भी, जगत का मार्गदर्शन कराने वाले हो करके भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, शांति नहीं मिली। और हम एक दिन आए गुरु जी के पास में रहे और बस गुरु जी को भी अंगूठा दिखा दिया, भजन किया नहीं, ठीक शांति कैसे आएगी? नहीं आएगी। देखते हैं कि गुरु जी भी खाते हैं हम भी खाते हैं, वो भी पहनते हैं हम भी पहनते हैं, वो भी चलते हैं हम भी चलते हैं, वो भी सो जाते हैं, तो फिर अलग हम लोग क्या हैं? हम भी पैसा कमा सकते हैं और भोजन करके अपना आराम से रह सकते हैं, हम भी दो चार बातें कर सकते हैं और उनसे अच्छा कीर्तन कर सकते हैं, अरे अनुभूति कहां से आएगी? इसलिए नारद जी को शांति नहीं है। एक तो जगत में गुरु बहुत दुर्लभ हैं, बहुत दुर्लभ है जगत में, काली दुर्गा गणेश शंकर इनका उपदेश देने वाले मंत्र देने वाले लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, जो अपने भी बर्बाद हो रहे हैं दूसरों को भी बर्बाद करते हैं। राधा कृष्ण की एकांतिक रूप में भजन करने वाले स्वयं उनकी उपलब्धि करने वाले बहुत कम है, बहुत कम लोग इसको समझ नहीं पाते। एक साधन देखो, एक आदमी सचरित्र है, ब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचारी और परम सत्यवादी है, परम वैराग्यवान है, सब गुरुओं से परिपूर्ण है, किंतु कृष्ण का भजन नहीं करता, दुर्गा काली मैया का और सबका भजन करता है। और दूसरा एक है अजामिल जैसा भजन नहीं करता, भजन करता है किंतु चरित्र भी ठीक नहीं हो सका, सच बोल नहीं पाता है, किंतु एकांतिक रूप में राधा कृष्ण को अपने हृदय में रख रखा है। दोनों में कौन श्रेष्ठ है जगत के लोग नहीं समझ सकते। कहां दुर्वासा कहां अम्बरीश, दुर्वासा जी जैसे लोग ब्रह्मचारी अखंड सब लोकों में जाने वाले, सब सिद्धियां उनको प्राप्त हैं, परम वैरागी हैं, जगत को जो चाहो वही दे देंगे, किंतु एक गृहस्थ भक्त केवल भगवान का नाम में झाड़ू देते थे मंदिर के सामने और भगवान का नाम लेते थे, भगवान का स्मरण करते थे। दुर्वासा जी उनके सामने नहीं टिक सके, इसलिए गीता में लिखा स्वयं कृष्ण ने कहा अपि चक्षु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव स मंतव्य सम्यक दवसितो ही। यदि कोई अनन्य रूप में भगवान का भजन करता है किंतु उसमें सुदुराचार हो, दुर्गुण जितने जगत के दुर्गुण हो, जगत के जितने भी दुर्गुण हो, अजामिल हो, वाल्मीकि हो, पहले जीवन में जैसा, किंतु वो श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है ये दिमाग में नहीं आएगा लोगों को। ये व्यास जी की तो लिखी हुई है, इन चीजों को समझना बड़ा भारी कठिन है। ऐसे व्यास जी को भी शांति नहीं है। इतने में नारद जी वहां आए, पूछा जैसे महर्षि आपका कुशल तो है, आपने वेदों का विभाग किया, वेदांत तो सूत्र लिखा, महाभारत की रचना की, पुराणों की रचनाएं की, जगत के आप गुरु हैं, किंतु आपका मुख कैसे सूखा हुआ, शांति क्यों नहीं है? कहने गुरु जी यही तो मैं समझ में नहीं आता क्यों नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक, आपने कृष्ण का अमल जस गान नहीं किया, कृष्ण परब्रह्म है आपको ये भी ठीक से स्पष्ट रूप में नहीं लिखा, आपने ऐसी चीजों को लिखा घुमाकर, आप जानते तो सब ठीक है किंतु कहीं शंकर जी को ही परब्रह्म लिख दिया, कभी सृष्टि करता स्थिति करता गणेश जी को बना दिया, कभी शक्ति को ही कर दिया, दुर्गा जी को ही कर दिया, कभी कुछ लिखा, स्पष्ट रूप में कुछ वर्णन नहीं किया। कृष्ण का चरित्र महाभारत में हरिवंश में आपने वर्णन किया, द्वारका इत्यादि लीलाओं का भी आपने वर्णन किया, जन्म का भी कुछ वसुदेव देवकी से उनका जन्म है ये भी वर्णन किया, किंतु उनकी लीला कथाओं का आपने वर्णन नहीं किया। आपने ये वर्णन नहीं किया कि वो परब्रह्म कृष्ण साक्षात हैं, वो अंश नहीं है और प्रेम के स्वरूप हैं वो, और जगह भगवान की उपासना होती है और भगवान अपने भक्तों की उपासना करते हैं, ये आपने नहीं लिखा। वो परब्रह्म किसी के पुत्र भी हैं, किसी के मित्र भी हैं, किसी के प्रभु हैं, किसी के सखा हैं, किसी के प्रियतम हैं, आपने तो ये लिखा नहीं। कुछ लिखा जसोदा मैया के नित्य पुत्र हैं, आपने लिखा नंद बाबा के, और जसोदा मैया उनको ओखल में बांध देती हैं और वो परब्रह्म उनके सामने रोता है, ये लिखा तो नहीं। तो सखा लोग अपना जूठा खिलाते हैं, ये लिखा। कृष्ण कंधों पर उनको ढोते हैं, कृष्ण को उनके सखा लोग पराजित कर देते हैं, जिनका एक एक अंश छोटा सा सारे विश्व ब्रह्मांड को धारण करता है, संकर्षण और शेष अंश का अंश का अंश का कला का विकला ये सारे विश्व को धारण करते हैं, सृजन करते हैं। और वो किसी का बेटा होकर के रोया मैया उसको शासन करे, आपने तो नहीं लिखा। यशोदा मैया से डरता है, जिसके नाम से भय दूर हो जाता है, मृत्यु दूर हो जाती है, और वो मैया के डर से रोए, आंसू बहने लगे, आपने तो नहीं लिखा। मैया से प्रतिज्ञा करे, मैया मैंने मछली नहीं खाई, अब नहीं खाऊंगा, मतलब मैंने मक्खन चोरी नहीं की। और मैया उसे शासन कर रही है, मैं गोदी नहीं लूंगी। जो यशोदा मैया के गोद में या पलंग पर इधर से उधर करवट नहीं ले सकते वो ब्रह्म। और जिनको गोपियां छाछ पर नचाती हैं वो परब्रह्म को, अपना परब्रह्म भक्त तो सब कुछ भूल जाता है, ब्रह्मा नहीं समझ सकते, शंकर नहीं समझ पाते हैं जैसे वही परब्रह्म है, उनको भी मोह हो जाता है। और वो खुद ब्रह्म हाथ जोड़ करके गोपियों के पैया पढ़कर उनके चरणों में गिर करके प्रार्थना करता है, न पारे हम नर्मद संजुजान, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा, मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता। कृष्ण सबको कहते हैं, ये जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् हम मम आनवाका जो जैसा हमारा भजन करता है उसको उसी रूप में उसका फल देता हूं, किंतु तुम्हारे समय इस समय तुम्हारे लिए वो मैं नहीं कर सका, तुम्हारा ऋणी रह गया। जैसे तुम अपने सब सारे परिवार को छोड़कर के हमारे पास में आई, मैं अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ सका, नंद बाबा को छोड़ू न, यशोदा मैया को छोड़ू न, किसी ब्रजवासी को छोड़ू न, द्वारका के कोई भक्त है न विश्व के कोई है, किसी को मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा ये जथांग प्रपद्यन्ते है, जो जैसा भजन करेगा उसको वैसा ही फल देता हूं। किंतु तुम लोगों को, तुम लोग अपने पति को छोड़ करके आई है, मैं वैसा अपने सबको छोड़ करके आ जाऊंगा ये मेरे लिए संभव है। मैं रुक्मिणी को छोड़ दूं या सत्यभामा को छोड़ दूं, यशोदा मैया को, नंद बाबा को, सखाओं को, किसको छोड़ूंगा, ये संभव फल नहीं है, फिर उनका ऋणी बन जाऊंगा, इसलिए तुम्हारा ऋण मैं नहीं चुका। देवताओं जैसा आयु पा करके भी तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता तुम्हारे प्रेम का। तुमको मेरी सेवा करते तो और कुछ चीज चाहिए नहीं। गोपियों की शादी हुई अखंड ब्रह्मचर्य, क्या वो कृष्ण की अपनी शक्ति है, वो क्या है ना, हाँ, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभिर्यैव निज रूप तया कला भी, कृष्ण की रूप है, उनकी शक्ति है, पराशक्ति है, स्वरूप शक्ति है, वो प्रकट होकर के आई है। इसे गोपियां कोई स्त्री नहीं है, कृष्ण कोई पुरुष नहीं है। अरे पुरुष कोई आग खाता है, कृष्ण आग खा गए, गोवर्धन पर उसे एक मिनट में उखाड़ करके रख लिया, ये मनुष्य कर सकता है? उनकी कलाएं विकलाएं सारे विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हैं, विश्व को तो धारण कर लिया हमारे बराबरी जी ने अपने दांत के ऊपर में एक कोने में रख लिया। और जिनके प्रभु के प्रभु के प्रभु हैं कृष्ण, इसलिए वो कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं, कभी तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। इस तरह से भागवत में आया है, निगम कल्प सरोर गलितंग फलम सुखम खादम वृद्ध संगीतम पियत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका बोलवा। यदि श्रीमद भागवत से, यदि कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं को निकाल दिया जाए तो क्या रह जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो तो नहीं होगा किंतु वो भागवत का महात्म्य है। रसमालन जो रस का जो समुद्र है ये नहीं होगा, और की तो बात क्या, श्रीमद् भागवत से सभी रहे पांच अध्याय राजपंच अध्याय गोपी गीत और भ्रमर गीत बेनी गीत को पांच गीतों को हटा दिया जाए तो फिर भागवत क्या रह जाएगा, कृष्ण रहे शरीर रहेगा हृदय नहीं रहेगा। ये जो है क्या है पंच प्राण, ये पंच प्राण है, शरीर रहेगा सब कुछ रहेगा हृदय भी रहेगा, प्राण ही नहीं है तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए ये सब चीजें भागवत है। चैतन्य महाप्रभु इसी को प्रकाश करने के लिए जगत में आए और दूसरा कोई काम नहीं था। इसके पहले भक्ति थी, वैष्णव लोगों ने चारों तरफ में प्रचार कर रखा था, चारों संप्रदाय भक्ति के, हरिनाम भी था, महामंत्र था कि नहीं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, किस रूप में था, उपनिषद का मंत्र है, इसे जब से उपनिषद है वेद है तभी से ये नाम भी है हरे कृष्ण, किंतु प्रेम के साथ जगत में ये किसने प्रचार किया, वो राधा कृष्ण ने ही महाप्रभु के रूप में ये सब किया। तो यह है निगम कल्प सरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत संयुतम। गोलोक वृंदावन का प्रेम के वृक्ष में निगम कल्प तरो, निगम कल्प तरो मैंने क्या, निगम मैंने वेद उपनिषद, ये वृक्ष हैं, कैसे हैं, कल्प वृक्ष हैं, जो चाहो वही दे देंगे, उसका ये फल है प्रपक्व फल, और फल में छिलका गुठली कुछ नहीं, रस ही रस है, ऐसा ये श्रीमद् भागवतम है। कैसे आया, जब वहां से आता तो गिर जाता बिखर जाता, व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी वहीं से अपने मुख में ले आए, मुख में लाए मैंने क्या, यह रस कैसे आएगा मुख में, किंतु सुखदेव गोस्वामी ले आए रस, कैसे ले आए रस को, ये श्रीमद् भागवत की कथाओं को अपने चंचू में रख करके हृदय में, और तभी ये ले आए, कैसे ले आए, गुरु परंपरा से लाए, कैसे गुरु परंपरा से, स्वयं कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, तब कैसा था, कच्चा था, टिकोरा, टिकोरा समझते हैं, टिकोरा ये बिहारी शब्द है, टिकोरा में जबकि मंजरी में जब मंजरी आम की होती है तो हरे हरे गोल गोल कुछ उसमें आ जाते हैं, थोड़े से बड़े हुए तो वो टिकोरा कहलाते हैं, पहले सरसों जैसा होता है, इसके बाद में थोड़ा सा और बढ़ गया, इतना बड़ा बड़ा, तब इसको टिकोरा कहते हैं। तो उन्होंने सरसों के रूप में ब्रह्मा जी को टिकोरा के रूप में दिया, कैसा था भी, अभी तक छोटा सा भी, कच्चा एकदम छोटा, और जब वहां ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया तो वो थोड़ा कच्चा फल रहा, चार श्लोक केवल दिए उसमें से, ज्ञानम परमम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम सा रहस्यम तद अंगस्य गृहाण गदितम मया यथा अहम एव इत्यादि, मैं जैसे था इत्यादि, और रीते अर्थम जतपति न प्रत्येत्यात्मन इत्यादि, ये चार श्लोक दिए। ये कैसा हो गया, जरा बड़ा हो गया, ब्रह्मा जी ने नर जी को दिया, ये चार चतुश्लोकी हुआ। ब्रह्मा जी नारद जी ने क्या किया, उसको पकाया, पका करके जरा बड़ा किया, पकाया, किंतु अभी रस नहीं आया, अभी रस नहीं आया, पकने पर भी अभी कड़ा है, रस नहीं। इन्होंने पकाया धूप में, धूप माने क्या, विरह या भक्ति का जो विरह रस है उसमें पकाया, एकदम सुस्वादु जब होने लग गया, इतने में व्यास जी पहुंच गए, और व्यास जी ने उसको अपने लिया, और उन्होंने उसके पूरे अंग अंग जितना था सबको पूरा रसमय अभी करना आरंभ किया। मीठा अभी नहीं हुआ, रस तो बन गया किंतु अभी मीठा नहीं है, मिठास नहीं आई, अमृत का भाव नहीं आया। तब कब आया? सब इसकी अनुभूति सब हुई। क्या अनुभूति? इसलिए व्यास जी ने वर्णन नहीं किया बल्कि पीछे से सुखदेव गोस्वामी ने वही चीज किंतु अपरम मधुर होकर के उनके सुंदर मधुर गले से मधुर होकर के वो निकल रही है जो व्यास के हृदय में थी, अब निकलने लगी। तब ये श्रीमद् भागवत की कृष्ण की एक रात में ब्रह्मा जी के पूरी रात में किस प्रकार से रास लीलाएं हुई और किस प्रकार से उद्धव जी ब्रज में गए या कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, गोपियों की कैसी भाव अब तक जगत में कहीं नहीं था। तन्मय होकर के कृष्ण बन गई गोपियां प्रेम में, कृष्ण की चिंता करते 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 कृष्ण जैसी बन गई। कृष्ण बनी नहीं, भाव हो गया, भाव कृष्णमयी बन गई। और सोच रही हैं कि हम पर्वत को गोवर्धन को उखाड़ कर अपनी अंगुली पर रख रहे हैं, कैसे अपने अंचल को लेकर के ऐसे कर दिया और उस गोवर्धन को ऐसे ढाक। किसी ने पूतना को पकड़ लिया, कोई पूतना बन गई और कोई कृष्ण बन गई, अपने आप उसके स्तन में लिपट गई, देखो मैं इसको मार रही हूं। कोई अघासुर बन गई और कोई बन गया कृष्ण। इस तरह से सारी लीलाएं तन्मय होकर के कर ली। किंतु जो पूतना बनी वो कौन सी गोपी बनी? कोई भी पूतना बनने के लिए, क्योंकि कृष्ण का आवेश है ना इनको, इसलिए कृष्ण वाला आवेश वाला ये गोपियां हैं। और बाकी पूतना जो बनी हुई है अघासुर बजा है और सब, ये कौन है? जोग माया ने बनाया, वो गोपियां नहीं है। ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि जी ने दिया। और किस प्रकार से तन्मय हो गई, रो रही हैं, खोज रही हैं, यहाँ तक कि पौधों से पूछ रही हैं, पेड़ों से हिरणियों से पूछ रही हैं, जमुना जी से पूछा, जमुना तुमने देखा? अरे बृंदे तुमने कृष्ण को देखो, बड़ी प्रसन्न हो रही है, भौरे तुम्हारे ऊपर में मड़रा रहे हैं, मालूम है कृष्ण ने तुम्हें छू दिया है। किसी पुष्प से पूछ रही हैं, जरूर तुमने कृष्ण को देखा होगा, नहीं तो इतनी हंस क्यों रही है, फूलों से भरी। कृष्ण कहीं अपने नखों से तुम्हें स्पर्श करके तो नहीं आगे गए? ऐसा कहीं विश्व के साहित्य में ऐसा ही सब नहीं है। इसलिए विश्व का साहित्य नहीं, ये अपराकृत ब्रज का साहित्य है। ये तब व्यास जी ने इसकी उपलब्धि की, उपलब्धि करके अब उसको जगत में कैसे देंगे? इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, उनकी वंदना करते रहते, ओहो हमारे पिताजी धन्य हैं, जिनकी कृपा से मैं एक क्या था निर्गुण ने प्रतिष्ठित हो, मैं निर्गुण ब्रह्म में प्रतिष्ठित था। भगवान निराकार हैं, सर्वव्यापी हैं, वो परमात्मा हैं, सबके अंतर्यामी हैं। ये तो मैंने देखा अंतर्यामी इत्यादि के रूप में। क्या बतला रहा था? हाँ, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, और मैं बन में गया निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए। कैसे? ये जगत है ब्रह्म है? नहीं, नहीं भगवान का रूप नहीं है, उनकी दया नहीं है, वो निर्गुण है, मैं ऐसा समझता था। किंतु व्यास जी ने, हमारे पिताजी ने कृपा करके हमको वहां से भी सुख जैसे बजाकर और ये श्रीमद् भागवत की सारी कथाएं हमको बतलाए। अब विचार करके देखो, नारद जी जैसे व्यक्ति, सनत सनंदन सनत कुमार जैसे व्यक्ति, उद्धव जैसे अखंड ब्रह्मचर्य और ये सब करने वाले लोग, गोपियों की यदि उनको चार पांच लड़के सिदाम सुबल इत्यादि लड़के हों और संसार के घर में फंसी हुई हैं ये गोपियां, वो गोपियों की तुलना ये लोग कर सकेंगे ब्रह्मवादी और ये सब नारद इत्यादि सब, और जो गोपियां कृष्ण के रास में सम्मिलित होकर के लौकिक दृष्टि से अपने पति को छोड़कर के दुराचार कर रही हैं, है ना, दुराचार ही तो है, दुराचार अपने पति को छोड़ करके कर रही हैं, किंतु उनसे तुलना नहीं हो सकती है। ये जगत के लोग इस चीज को नहीं समझेंगे। बड़े बड़े ब्रह्मचारी और अखंड ब्रह्म में रमण करने वाले भी इस चीज को नहीं समझेंगे गोपियों की उपमा। इसलिए आप लोग समझें इस चीजों को, तब इन चीजों में प्रवेश होगा। साधारण तरह से लोगों के यहाँ पर मथुरा में कुछ लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े आश्रम उनके हैं, अपने को आर्य भी कहते हैं, किंतु आर्य नहीं यथार्थ अनार्य हैं, जो कृष्ण के इन लीलाओं को नहीं समझते हैं। वो लोग महाभारत के कृष्ण को कुछ आधा मानते हैं, अर्ध कुकुटिन न्याय से कृष्ण की लीलाओं को, जो श्रीमद भागवत इत्यादि की न जाने कहां से हरिद्वार से और काशी से ऐसे निर्गुण्य लोग कहीं कैसे प्रिज में आ गए मथुरा में, जो सब देवताओं को बराबर कृष्ण के बराबर समझते हैं, अपने को काष्ण कहते हैं। इसलिए जो लोग यहां पर आकर के कृष्ण का भजन नहीं करते और समस्त अवतारों का मूल नहीं समझते, देवता लोग उनकी चरणों की धूली हैं, गणेश और इत्यादि उनका ब्रज में प्रवेश नहीं, दुर्गा जी का यहाँ प्रवेश, कंकाली जी वहां पर बाहर में हैं, कंकाल लिए हुए कृष्ण की सेवा करती हैं, इसलिए यहाँ पर सम्मान है, कृष्ण की कुछ सेवा करती हैं, कंस को पैर से ठुकराया, इसलिए एकांतिक रूप में राजा कृष्ण की सेवा करने वाले ही मथुरा के हैं, ब्रजवासी हैं। जो छात्र जो लोग आशा नहीं करते वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी श्रीमद भागवत का यथार्थ तात्पर्य नहीं समझते, वे ब्रजवासी नहीं है। ब्रजवासी वही है जो राधा कृष्ण को जसोदा मैया जैसा, नंद बाबा जैसा, सखाओं जैसा और गोपियों जैसा कोई स्नेह करता है, वो पक्का ब्रजवासी है, चाहे विश्व में कहीं उसका जन्म हुआ, किसी भी जाति के हों वे यथार्थ ब्रजवासी है। भागवत का तात्पर्य समझते हैं। कितना बजा और आप ऐसी लीला हृदय विदारक मत कीजिए, प्रेममय लीला करेंगे, इसे बतलाऊंगा। हाँ आज आज नहीं, कल सनातन गोस्वामी जी का विरह तिथि है, जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं, मुड़िया पूर्णिया। गोवर्धन में भजन करते थे, रहते थे वृंदावन, कभी कभी गोवर्धन में भी रहते थे चकलेश्वर में शंकर जी के पास। कली के दिन में इस जगत को छोड़कर अपने नित्य लीला में चले गए, इसलिए सभी लोग मस्तक मुंडन कराकर और उनकी वहां पर कीर्तन करते हैं चारों तरफ, और तभी से धीरे 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 बढ़ता बढ़ता आज इतना बढ़ गया। साधारण लोग मुंडन नहीं करते, संत लोग जो वहां रहते हैं वही लोग करते हैं, किंतु उसी से मूल्य अपना। तो सनातन गोस्वामी जी का है, वो जब तक थे प्रतिदिन ब्रज में रहने पर गोवर्धन की जरूर परिक्रमा करते, बूढ़े होने पर भी, उम्र बहुत अधिक होने पर भी वो जरूर वहां पर परिक्रमा करते। बूढ़े होने पर क्लांत हो गए, दोपहर में झुलसती हुई दोपहर में चिलचिलाती धूप में परिक्रमा करते करते थक गए और एक शिला पर सो गए। इतने में कृष्ण और बलदेव वहां आए, अपने चादर से दुपट्टे से छाया कर दी और उनको पंखा देने लगे। कोमल स्पर्श करते ही वो जब ये देखा जी, ये तो बलदेव जी कृष्ण ऐसे के हैं, बलदेव जी पंखा कर रहे हैं और कृष्ण अपना कोमल हाथ उनके सिर पर रख रहे हैं, देख करके आनंद में भी झोर हो गए। कृष्ण ने कहा जे ये इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं एक शिला दे देता हूँ, उसको हमारा चरण चिन्ह दाहिना रहेगा, बंसी की चिन्ह रहेगी और तुम इसको रखना, इसी की परिक्रमा से भगवान उनके लिए आए और दिया। तब वो अभी भी राधा दामोदर में मंदिर में है, अभी भी दिखलाते हैं। असल में जो थी वो चली गई जयपुर में और यहाँ पर एक और उसके पति विग्रह है, ऐसे सनातन गोस्वामी थे। शंकर जी साक्षात उनके साथ में रहते थे। बहुत सी कथाएं हैं, बहुत समय हो गया इसलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कल सभी लोग अपने अपने गुरु जी की पूजा करेंगे, हम भी अपने गुरु जी की और गुरु परंपरा की पूजा करेंगे और सभी लोग करेंगे और समझेंगे कि हाँ गुरु पूजा किसको कहते हैं, गुरु पूजा क्या है। जैसे व्यास देव जी ने अपने गुरु जी की पूजा की भागवत को प्रकाश करके, जैसे सुखदेव ने अपने गुरु की पूजा कैसे की उसी का जगत में प्रचार कर, रूप गोस्वामी ने अपने गुरु महाप्रभु जी की पूजा कैसे की उनके भावों को जगत में प्रकाशित करके, भजन वैसा ही करके। इसलिए शिष्य अपने गुरु जी की कैसे पूजा करेगा, अपनी सारी भावनाओं को अपने गुरु जी के चरणों में समो करके, वो जिसमें सुखी हो, जो काम करने से सुखी हो, ऐसे से वह पुष्प देने से नहीं होगा। जैसे भजन की शिक्षा दे रहे हैं वैसे भजन करेंगे, भजन की उपलब्धि करेंगे और उनकी आकांक्षाएं को पूर्ण हम यदि करेंगे तब तो गुरु की सेवा होगी, नहीं तो कुछ रुपयों से पुष्पों से माला